ओम शांति, ओम शांति। हमारा एक मुरली का गीत है जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है। तो यहाँ तो डबल बरसात हो रही है, ज्ञान की बरसात भी हो रही है और प्रकृति की बरसात भी हो रही है। तो कैसा लग रहा है बारिश में भट्टी करना? अच्छा लग रहा है? हाँ, जिसको अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है इस मौसम में। देखो आगे वालों को नहीं आ रहा। तो स्वतः ही जो माउंट आबू है वो सूक्ष्म वतन बना हुआ है। हाँ, ऐसा लगता है ना, बादलों में ही चल रहे हैं, बादलों में ही। तो वतन कहाँ है, सूक्ष्म वतन कहाँ है? बादलों के पार, हमारे ये स्थूल बादलों के पार वो इसी तरह का वतन है। तो अपने आप ही अव्यक्त स्थिति बनाना नेचुरल है, मेहनत करने की जरूरत नहीं है। कि जैसे वतन में बैठे हैं, वतन में चल रहे हैं, वतन में खा रहे हैं, प्रकृति ने ही हमें वो इतना सहयोग दे रखा है अभी। तो ऐसा अनुभव हो रहा है, हो रहा है। तो पद्मा पदम भाग्यवान है जो बाबा ने यहाँ ज्ञान सरोवर में ऐसे समय पर हमें भट्टी के लिए अवसर दिया, एक गोल्डन लॉटरी दी, ऐसा कहेंगे। तो अव्यक्त स्थिति हमारी ब्राह्मण जीवन में अधिक से अधिक बनी रहे, उसके लिए बाबा कई बार हमें कहते हैं कि इतना सहज होना चाहिए जैसे आवास में आना हमको कितना सहज लगता है, या देह भान में रहना कितना सहज लगता है। तो इतना ही आवास से परे जाना और आकारी से निराकारी, फिर निराकारी से साकारी कर्म योगी स्थिति, इस स्थिति को बनाना भी उतना ही सहज अनुभव हो। और ये तब होगा जब हमारा देह रूपी वस्त्र टाइट नहीं हो। अगर हमारे वस्त्र टाइट होते हैं तो उन्हें पहनने उतारने में थोड़ा मुश्किल होता है ना। तो देह रूपी वस्त्र कब टाइट होता है? जब हम देह, देह के संबंधों या जो भी देह के पदार्थ हैं या पुरानी दुनिया में हमारी बुद्धि का अभी भी लगाव है, या कहाँ ना कहाँ हमारा मेरापन है, तो फिर ये देह रूपी वस्त्र टाइट होता है और हम जो स्थिति जिस घड़ी बनाना चाहें, माना एक सेकंड में हो जाना चाहिए। बाबा का जो समय है वो एक सेकंड, कि एक सेकंड में आकारी, एक सेकंड में निराकारी। तो इतनी फास्ट स्पीड है हमारी, या हम सोचते हैं कि निराकारी बने, लेकिन निराकारी बनने के लिए हमें युद्ध करना पड़ता है, हम देह से न्यारे ही नहीं हो पाते हैं, इतनी मेहनत लगती है। और जितना हमारी अव्यक्त स्थिति होगी उतना मेहनत कम, सफलता ज्यादा होगी। क्योंकि इस स्थिति में जो भी हम संकल्प करते हैं वो हमारे संकल्प पावरफुल होते हैं और सिद्ध होते हैं। तो नॉर्मली हम जो पुरुषार्थ करते हैं आत्माभिमानी बनने का, शरीरी बनने का, योग के समय जब हम ऑफिशियल अमृत वेला योग में बैठते हैं या शाम के समय योग में बैठते हैं, तब हम अटेंशन रखते हैं। लेकिन सारा दिन हमारा अटेंशन निरंतर बना रहे वो नंबरवार हो जाता है, यानी कभी कम कभी ज्यादा। तो अगर हम कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं, क्योंकि बुद्धि तो चली जाती है ना कर्म में, हमारी जो भी हम काम करते हैं, कारोबार करते हैं, प्रवृत्ति संभालते हैं, तो बुद्धि जब काम में होती है तो हम सोल कॉन्शियस की बजाय कर्म कॉन्शियस बनने लगते हैं। और कर्म कॉन्शियस होते होते हम कभी कभी बॉडी कॉन्शियस भी हो जाते हैं। और जहां बॉडी कॉन्शियस हुए, देह भान में आए, तो देह भान विकारों का आह्वान करता है, तो हमें गुस्सा आ जाएगा। कोई बात किसी ने की, कोई ना कोई कारण तो बनता ही है, ऐसा तो होता नहीं है कि दिन भर में कोई ऐसा कारण ना बने जो हमें गुस्सा लाए। तो अगर वो कारण बना और हम देह भान में हैं तो हम गुस्सा कर लेंगे, थोड़ा चिढ़ भी जाएंगे हम, या दुखी भी हो जाएंगे, या उदास भी हो जाएंगे। फिर हम सोचते हैं क्यों मेरी स्थिति ऊपर नीचे हो रही है, अमृत वेला भी किया हमने, मुरली भी सुनी है, हाँ कर्म योगी बनकर भी हम कर्म कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पुराने संस्कार बीच बीच में इमर्ज होते रहते हैं। और उसका कारण है कि निरंतर हमारी देही अभिमानी स्थिति, माना स्व स्थिति पावरफुल नहीं है, तो परिस्थिति का प्रभाव हमारे ऊपर आ जाता है और वो हमें हलचल में लाता है। तो बाबा ने एक मुरली में कहा था, जो मुरली अभी थोड़े दिन पहले रिवाइज भी हुई थी, बाबा ने कहा था कि हर घंटे में कम से कम 5 मिनट, और अगर 5 मिनट ज्यादा है तो 1 मिनट भी अशरीरी स्थिति का या निराकारी स्थिति का अभ्यास करना है। और तब से ही वो हर घंटे वाला ट्रैफिक कंट्रोल जो मधुबन में बजता है वो बजना शुरू हुआ। तब दादी जी थे, दादी प्रकाशमणि जी थे, और दादी जी ने खास ये ट्रैफिक कंट्रोल शुरू करवाया कि हम कम से कम 1 मिनट के लिए भी अपने शरीर से न्यारे होकर के अपनी ओरिजिनल स्थिति में स्थित हो जाएं। तो जितना हम आत्मिक स्थिति में स्थित रहते हैं, दूसरों को भी हम आत्मिक दृष्टि से ही देखते हैं, संपर्क में आते रहते हैं आत्माओं के, तो उनको भी हम आत्मिक दृष्टि से देखते हैं, तो ये भाई भाई की हमारी दृष्टि नेचुरल हो जाती है। फिर चाहे हम किसी के भी संपर्क में आ रहे हैं, कोई बहन है या भाई है, और भाई भाई की दृष्टि हमारी प्योर दृष्टि है, पवित्र दृष्टि है, तो जो भी हमारे संपर्क में आएगा वो उसे फील करेगा कि इनका देखना और लोगों के देखने से अलग है, यानी वो पवित्रता उसे अनुभव होगी। जिसे कहते हैं ना, योगी की दृष्टि न्यारी होती है या योगी की दृष्टि सुखदायी होती है, तो वो वाइब्रेशंस उन आत्माओं को हमसे फील होंगे। और दूसरा, हमारे चेहरे पर रूहानियत की छलक और फलक दिखाई देगी, क्योंकि रूहू की स्मृति में रहने से ही रूहानियत आती है, तो वो रूहानियत की जो छलक है और जो वाइब्रेशंस हैं, उसके कारण जो हम नेगेटिव आत्माएं या जो भी तमोगुणी आत्माएं हैं, क्योंकि कलयुग का वातावरण है ही ऐसा, तो उनके वाइब्रेशंस का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं आएगा। अगर हमारी स्थिति पावरफुल नहीं है तो फिर उनके वाइब्रेशन का असर हमारे ऊपर आ सकता है। फिर हम ये अपने को एक्सक्यूज भी देते हैं कई बार, क्या करें, लोग ही ऐसे थे ना, जहां हम गए, जो स्थान पर गए वो स्थान ही ऐसा था ना, वहां का वायुमंडल ही ऐसा था, तो फिर थोड़ा असर तो आ ही जाता है। हाँ, लेकिन बाबा कहता है कि हम पतितों को पावन बनाने वाले हैं, हम इस दुनिया के वातावरण को परिवर्तन करने वाले हैं, तो कैसे वातावरण का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ गया, कैसे किसी आत्मा के नेगेटिव वाइब्रेशंस का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ गया, मेरा प्रभाव पड़ना चाहिए ना उनके ऊपर। हम विश्व परिवर्तक हैं, मेरी वृत्ति से दूसरे की वृत्ति बदल जाए, कोई आत्मा अगर ऐसी वृत्ति से मेरे सामने भी आती है तो मेरी वृत्ति उसकी वृत्ति को परिवर्तन कर दे, ऐसे बहुतों के अनुभव होते भी हैं, तो वो अनुभव हमें तब होगा जब हमारी ये आत्माभिमानी स्थिति निरंतर होने लगेगी। तो ये अलौकिक अनुभव जिसे हम कहेंगे, क्योंकि ये अलौकिक स्थिति है, लौकिक स्थिति नहीं है, लौकिक स्थिति तो देह भान वाली है, लेकिन हमारी अलौकिक स्थिति है सदा आत्मिक स्मृति हमारी बनी रहे। और जब ये स्मृति है तो हमारे गुण भी इमर्ज होते हैं। आत्मा के जो गुण है, शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है, तो ये गुण भी हमारे स्वरूप में आने लगते हैं और जो भी संपर्क में आएंगे वो भी अनुभव करेंगे कि जब हम इनको मिलते हैं तो लगता है हमारा दुख ही हल्का हो गया, इनसे बात करी मन शांत हो गया। और कुछ कह भी देते हैं कि आपसे मिलते हैं, क्योंकि हमारी तो शुभ भावना होती ना हर आत्मा के प्रति, शुभ भावना भी है प्लस स्वरूप भी है, तो वो मिलकर के आत्माओं को ऐसा अनुभव कराता है कि उनके मन की स्थिति कितनी भी भारी हो वो हमारे संपर्क में आते हैं, हमारे संग में आते हैं, भले हम बहुत ज्यादा बात भी नहीं करते होंगे लेकिन वो हल्कापन उनको महसूस होता है, उस सुख का वो अनुभव करते हैं। और ऐसे अगर हमारी स्थिति है कि दूसरे की अशांति से मैं ही अशांत हो जाऊं, अभी तक मेरे शांत स्वरूप का, मेरा शांत स्वरूप का गुण जो है वो इतना दृढ़ नहीं है, तो वायुमंडल की अशांति का, क्योंकि आज परिस्थितियां तो ऐसी हैं ना कि वो अशांति पैदा करने वाली है, या ऐसी स्थितियां भी आ जाती हैं कि हम टेंशन में आ सकते हैं या कोई हमें दुखी भी कर सकता है, तो अगर मेरी ही स्थिति परिवर्तन हो जाती है, मैं ही अशांत हो जाती हूं, तो फिर क्या हम दूसरे को शांति का अनुभव करा सकेंगे, दूसरे को सुख स्वरूप की स्थिति से वो वाइब्रेशन दे सकेंगे? नहीं। तो ये हमारी चेकिंग करते हुए मेरी आत्मिक स्थिति, मेरे जो निजी गुण हैं वो स्वरूप में रहें, यही हमारा पुरुषार्थ है। हम क्या पुरुषार्थ करते हैं? पुरुषार्थ तो हमारा यही है ना, संगम युग पर बाबा कहते हैं जो आपका पहला पाठ है वही अंत तक चलता रहता है, वही अंतिम पाठ होता है, पहला पाठ ही हमारा पक्का नहीं होता है लास्ट तक, क्योंकि देह अभिमान के संस्कार 63 जन्मों के इतने कड़े हैं कि न चाहते हुए भी हम देह भान में चले जाते हैं, और देह भान में जाते ही आत्मा के निजी गुण हमें वैसे अनुभव नहीं होते जैसे हमें अनुभव होने चाहिए। और जितना हम आत्मिक स्मृति में रहते हैं उतना ही हमारी योग की स्थिति भी पावरफुल होती है। पावरफुल योग के लिए बाबा के समान हमारी फ्रिक्वेंसी होना जरूरी है। तो मैं अगर आकारी निराकारी स्थिति में हूं तो बाबा तो आप सदा ही आकारी और निराकारी हैं, तो तुरंत मेरी लाइन बाबा के साथ जुड़ जाती है, वो कनेक्शन करने में हमें मुश्किल नहीं होता। लेकिन देह भान में है और फिर योग लगाने बैठे तो बहुत सारे व्यर्थ संकल्प चलेंगे, जितने दिन भर के प्रभाव पड़ गए मन के ऊपर वो सारा पहले चलेगा मन में, ये हुआ वो हुआ, इसने ये कहा उसने वो कहा, फिर धीरे धीरे हम मन को दिशा देने की कोशिश करते हैं, फिर ज्यादा फिर हम कई बार क्योंकि दूसरों की बातें बहुत हैं मन के अंदर तो फिर हम बाबा से शिकायत भी करते हैं और फरियाद भी करते हैं और उसी में हमारा योग का टाइम पूरा हो जाता है। तो उसको कहते हैं रू रिहान वाला योग, तो हमारा योग साधारण स्तर पे ही खत्म हो जाता है। हालांकि मन को शांति मिलती है, मन को खुशी भी मिलती है, शक्ति भी मिलती है, क्योंकि बाबा के संग में तो हम आए ना, तो बाबा के वो जो अनुभूतियां हैं वो तो होती हैं, लेकिन पावरफुल योग जिसे हम कहें, बाबा की लगन में मन मगन हो जाए, बाबा के लव में लीन स्थिति हो और हमारे विकर्म विनाश हो, यानी एकाग्रता हो योग में। एकाग्रता का अर्थ है जो स्थिति हम जितना समय बनाना चाहें उतना समय वो स्थिति हमारी बने। अगर मैं चाहती हूं कि फरिश्ता स्थिति आधा घंटा मुझे अपनी अनुभव करनी है, डबल लाइट स्थिति में, बिल्कुल लाइट के कार्ब में हूँ, और बाबा भी, बाबा तो हैं ही अपने प्रकाश की काया में, तो बाबा के साथ मैं उस लाइट के कार्ब में ही मिलन मना रही हूँ, और जो भी बाबा के साथ है ना, बाबा के गुणों की महिमा करना, बाबा से जो मुझे प्राप्तियां हुई उन प्राप्तियों का स्मरण करना, या जो भी और भी मेरे अनुभव हैं बाबा के साथ मैं शेयर कर रही हूं, लेकिन फरिश्ता स्थिति में, अव्यक्त स्थिति में। तो आधा घंटा मेरा मन उस स्थिति के अनुभव में रहे, या अगर मैं बीज रूप स्थिति का अनुभव करना चाहती हूं, बाबा विदेही है और मैं आत्मा भी विदेही हूं, बाबा समान निराकारी हूं और परम धाम में, क्योंकि वो स्थिति मेरी परम धाम की स्थिति है, तो परम धाम में बाबा के साथ मैं जैसे बाबा सागर के समान है, मैं भी मास्टर सागर रूप में वो अनुभव कर रही हूं जो बाबा के गुण है। फिर चाहे वो आधा घंटा हो या एक घंटा भी हो, जितना भी हम अनुभव करना चाहें, वो एक बार कहेंगे ना, वो लगन की डोर जुड़ जाती है, तो वो एक घंटा भी कैसे चला गया हमें पता ही नहीं चलता, और नहीं लगा तो हर 10 मिनट में सोचते हैं कब टाइम पूरा होगा, कब योग पूरा होगा, है ना। तो उससे हम समझ सकते हैं कि हमारी कितनी एकाग्रता होती है योग के अंदर। तो वो उसका परिणाम है, सारे दिन मेरे मन की स्थिति कैसी रही। अगर सारे दिन मेरा मन व्यर्थ संकल्पों में है, विकल्पों में है, कोई उलझन में आ जाता है, कोई प्रश्नों में चला जाता है, तो जब भी हम योग में बैठेंगे तो भी हमारी पावरफुल स्टेज नहीं बन पाएगी, क्योंकि जो संकल्पों की रचना रची हुई है उसको पहले फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, उसे पहले समाप्त करना पड़ेगा। और अगर पहले से ही हम फुल स्टॉप की स्थिति में हैं, हम जाते ही नहीं है व्यर्थ संकल्पों में, आत्मिक स्थिति है माना, पावरफुल स्टेज हमारी बनी है, और तुरंत बाबा की, जब हमारी पॉइंट रूप स्थिति होती है तो बाबा की पॉइंट्स भी हमें जल्दी स्मृति में आती है, जहां हमें जो पॉइंट यूज करना है वो हम यूज करके फुल स्टॉप लगा लेते हैं। फुल स्टॉप कब लगा सकते हैं, जब बाबा की पॉइंट को स्मृति में लाएंगे तभी फुल स्टॉप लगेगा, तभी वो यूज हुआ माना। तो फिर मन है ही फुल स्टॉप की स्थिति में, पॉइंट की स्थिति में, तो आत्मा को पॉइंट रूप में स्थित करना हमको मुश्किल नहीं होता है। इसीलिए कई बार हम देखते हैं भाई बहने बहुत सालों से ज्ञान में चल रहे हैं, 10 साल हो गए, 20 साल भी हो गए, लेकिन संस्कार नहीं बदलते। जो कड़े संस्कार हैं, जो समझते हैं कि ये मेरी कमजोरी है, लेकिन मेहनत करते हुए भी अभी तक भी हम उससे मुक्त नहीं हो पाए। थोड़ा समय ज्ञान योग से वो दब जाते हैं, लेकिन जैसे ही परिस्थितियों का पानी मिलता है फिर से पता चलता है वो संस्कार सामने आ रहे हैं, तो फिर सोचते भी हैं कि शायद ये मेरे से कभी नहीं हो पाएगा, या मेरे ये संस्कार शायद मेरे साथ ही जाएंगे। लेकिन क्यों नहीं भस्म हो रहे हैं वो, क्योंकि हमने लगन की अग्नि नहीं जलाई। ज्वालामुखी योग में हम अपने मन को नहीं ले जा पाते। जैसे हम स्थूल में भी तो देखते हैं ना, कोई भी चीज का रूप कहां बदली होता है, जब वो अग्नि में डाला जाता है। आज लोहे को भी, इतनी कठोर धातु है वो, लोहे को भी जब आग में, भट्टी में डाल दिया जाता है तभी उसका रूप बदल सकते हैं, तभी वो पिघलता है और जिस शेप में उसको ढालना चाहे वो ढल जाता है। तो हमें भी क्यों भट्टी में लाया जाता है, भट्टी क्यों करते हैं हम, इसी के लिए करते हैं ना। कि हमारे भी जो संस्कार हैं, जो 63 जन्मों से माया ने वो कड़े संस्कार बना दिए, वो अब इस भट्टी में पड़कर फिर से हमारे ईश्वरीय संस्कार वो इमर्ज हो जाएं। हमारे ईश्वरीय संस्कार, सत्व प्रधान संस्कार, जो बाबा के संस्कार हैं, वो संस्कार हमारे अभी कार्य करें, तो वो परिवर्तन तब होगा जब हम ये ऐसा योग करें। और कम से कम सारे दिन में 1 घंटा हमारी ये पावरफुल स्टेज की स्थिति का हमें अनुभव करना ही है, ऐसा लक्ष्य हम रखें। चाहे अमृत वेले ही क्यों ना, क्योंकि अमृत वेले तो अपना टाइम होता है ना, अमृत वेले कोई डिस्टरबेंस भी नहीं होता है, तो अमृत वेले हम लक्ष्य रख के ये कर सकते हैं। और एक बार अमृत वेले अपने मन को हमने उस स्थिति में स्थित कर दिया, फिर सारा दिन हमें नेचुरल मदद मिलती रहती है, सारा दिन फिर हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वो वरदानी समय है और जो संकल्प हमने किया बाबा की मदद हमें उसमें मिलती है। जितना हम अशरीरी स्थिति का अभ्यास बीच बीच में करते रहते हैं, बाबा कहते हैं ये स्थिति क्योंकि हमें देह से न्यारा करती है, तो हमारे कर्म भोग, जो भी कर्म भोग सामने आते हैं, कर्म भोग तो आते ही हैं क्योंकि चुकतू करने हैं सारे हिसाब किताब, तो वो कर्म भोग को कर्म योग की स्थिति से सूली से कांटा बना के पार करा देती है। सूली से कांटा बनना माना हमें अनुभव ही नहीं होगा कि ये परिस्थिति आई, या ये तन का रोग आया, या ये कष्ट आया, वो कब आया कब चला गया पता ही नहीं चलेगा। जिसको बाबा कहते हैं परिस्थिति खेल अनुभव होगी, या पहाड़ को भी हम क्या बना लेते हैं, राई बना लेते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है राई को पहाड़ बना लेते हैं, बात तो राई जैसी होती है लेकिन उसको इतना सोचेंगे, सोच सोच के उसको बड़ा रूप कर देते हैं। लेकिन कर्म भोग को जब हम कर्म योग में ले आते हैं, और अशरीरी स्थिति के लिए बाबा कहता है कि ये जैसे इंजेक्शन का काम करती है, मानो आपको दर्द हो रहा है बहुत, है ना, मन जब दर्द होता है तो जितना खिंचाव होता है उतना शायद और किसी कष्ट में नहीं होता है, तो मन बुद्धि को दर्द खींच लेता है। उस समय अगर हम योग भी लगाना चाहते ना तो योग भी नहीं लगता है बाबा से, पर अशरीरी अगर हम हो गए तो वो दर्द की अनुभूति हमारी, जैसे इंजेक्शन लगाते हैं और दर्द खत्म हो जाता है, डॉक्टर लगाते हैं ना दर्द के लिए इंजेक्शन लगाते हैं, वैसे ही ये स्थिति काम करती है कि वो दर्द हमारा सहज समाप्त हो जाता है। शरीर से न्यारे हो गए, हमें इसका अनुभव है। एक बार कुछ साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, तो एक्सीडेंट में काफी चोट लगी, मतलब सिर में चोट थी, पैरों में फ्रैक्चर था, तो दर्द तो जब चोट लगती है, घाव होते हैं तो दर्द तो होती ही है। लेकिन मैंने अनुभव किया, मैंने पूरा लक्ष्य रखा कि मैं अव्यक्त स्थिति में ही अपने मन को रखूंगी, बाबा के साथ ही अपने मन को रखूंगी। तो जब सब कुछ हो गया, डॉक्टर्स ने सब टांके वांके लगा दिए, सब प्लास्टर वगैरह सब हो गया, उस समय तो वो दवाई तो देते ही हैं दर्द की, लेकिन उसका असर जाने के बाद भी मैंने कभी जितना भी दिन वो रहा, माना टांके निकले, प्लास्टर निकला, जब तक वो कुछ महीनों तक चला सब कुछ, मैंने कोई ज्यादा दर्द की दवाई नहीं खाई और मुझे दर्द की फीलिंग भी नहीं के बराबर हुई। तो ये मैंने अनुभव किया कि जैसी हमारी स्थिति होती है हमारे शरीर पर उसका प्रभाव वैसा ही होता है। अगर मन पावरफुल है, हमारा मन स्वस्थ है और मन रूहानियत की स्थिति में है, सोल कॉन्शियस स्टेज में है, तो बाबा की जो मदद और दुआएं होती हैं वो बीमारी के कष्ट को, जैसे मैंने कहा, हम सूली से कांटा अनुभव करते हैं, वो कैसे कब पार हो गया देखने वालों को लगता है बहुत बड़ा, अरे बहुत तक दर्द हो रहा होगा। जो भी मिलते थे वो ऐसे ही बोलते थे, अरे आपको तो बहुत दर्द होता होगा, इतनी चोट लगी है, इतना ऐसा हुआ है। तो मैंने कहा नहीं, नहीं के बराबर सुई भी चुभती होगी, इतना भी दर्द नहीं होता है, इतनी भी तकलीफ नहीं होती है, वो दवाइयां भी नहीं खानी पड़ी उतनी। तो एक बार एक बहन, डॉक्टर बहन है हमारी, वो भी सीनियर डॉक्टर बहन है, विदेश में रहते हैं, वो अपना अनुभव सुना रहे थे कि मैंने जस्ट ऐसे ही, क्योंकि बाबा हमें कहते हैं अशरीर स्थिति के बारे में, तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए, बाबा कई बार कहते हैं योग के प्रयोग करो, एक्सपेरिमेंट करो, तो मैंने ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करने के लिए, मेरे दांत में तकलीफ थी, डॉक्टर ने बोला दांत निकालना पड़ेगा, तो मैंने सोचा कि मैं बिना दर्द का इंजेक्शन लगवाए दांत निकालूंगी। तो डॉक्टर को मैंने कहा कि डॉक्टर आप मुझे इंजेक्शन नहीं दो, आप मेरा दांत निकालो। डॉक्टर ने कहा क्या बात करते हो, आप दांत निकालने में कितना दर्द होता है आपको मालूम है? उन्होंने कहा हाँ मुझे मालूम है, खुद ही डॉक्टर थी वो। तो डॉक्टर ने कहा आप इंजेक्शन लगवा लो, नहीं तो मेरे को काम करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि आपको जैसे ही दर्द होगा आप हिलोगी ना, मुंह को जो भी करोगी। उसने कहा नहीं आप निश्चिंत होकर के करिए, मैं बिल्कुल भी आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी, लेकिन मुझे दर्द का इंजेक्शन नहीं लेना है, ये मेरा मुझे एक एक्सपेरिमेंट करना है, उसने कहा डॉक्टर को। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है, अगर आप समझती हैं तो कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल अपने मन को बाबा के पास, परम धाम में जो हमारी विदेही स्थिति है, वहां बाबा के पास मैंने अपने मन को टिका दिया पूरा टाइम, जब तक डॉक्टर काम कर रहा था। तो मैं बिल्कुल देह से न्यारी थी और बोला सचमुच वो कब दांत निकाल दिया डॉक्टर ने, मुझे पता ही नहीं चला, मना जरा भी पेन का अनुभव नहीं हुआ। पर ये अपनी स्थिति की बात है, हम सभी भी कोई ऐसा कोशिश करने लगे और हमें ना हो, मतलब हमारी वो स्टेज बनी कि नहीं बनी, पहले तो वो स्थिति चाहिए ना। से बाबा हमेशा कहते हैं कि नंबरवार होते हैं। तो ऐसा अनुभव बहुत भाई बहनों का होता है, ये केवल हम एक दो की बात नहीं कर रहे, आप में से भी कईयों के ऐसे अनुभव होंगे, हाँ जो समझते हैं हमारे ऐसे अनुभव हैं कि जब बाबा की याद में मन पूरी तरह से मगन होता है तो शरीर के कोई भी, एक तो होता है दर्द है तो योग ही नहीं लग रहा, वो स्टेज नहीं, दर्द है और अच्छा योग लग गया, बहुत अच्छी स्थिति बन गई, अव्यक्त स्थिति बन गई, उसके बाद दर्द की फीलिंग नहीं के बराबर रहती है। जो ऐसे अनुभव करते हैं अपने जीवन में या जब कभी भी ऐसा अनुभव किया है वो हाथ उठाएं। देखो है आप में से भी कितने 50 भाई बहनों ने हाथ उठाया, तो हम ये अनुभव करते हैं जो बाबा हमें कहते हैं, वैसी स्थिति अगर हमें बनाए तो हमें वैसी ही सफलता का अनुभव होता है। और इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि हमें योग के प्रयोग करने, अभी हम देखते हैं अपने यहाँ कोरोनरी आर्टरी डिजीज एग्रेशन प्रोग्राम चलता है हार्ट पेशेंट्स के लिए, तो वो क्या है, योग का प्रयोग है ना, कि इतनी बड़ी बीमारी बिना ऑपरेशन के ब्लॉकेजेस खुल जाते हैं, उनके सारे हार्ट के जो सिम्टम्स हैं वो खत्म हो जाते हैं, उनके साथ साथ जो छोटी बड़ी बीमारियां हैं वो भी, तो कर्म भोग क्या हो गया, सहज सूली से कांटा बनकर खत्म हो गया ना। और बहुत जल्दी भी हम बीमारियों को क्योर कर सकते हैं, नॉर्मली जो आज की पैथी हैं वो दवाइयों को क्योर नहीं, बीमारियों को क्योर नहीं करती हैं, वो क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं। दवाइयां लेते जाओ और बीमारी भी चलती रहेगी, आप भी चलते रहो, दवाई भी खाते रहो, बीमारी भी चलती रहेगी, तो जब तक जिएंगे तब तक बीमारी भी है, तो उसको हम क्योर नहीं कहते, क्योंकि जड़ कहाँ है, जैसे कहते हैं ना स्वस्थ, स्वस्थ माना स्व में स्थित होना, स्वास्थ्य का अर्थ ही है। तो दुनिया में तो लोग स्व में स्थित होना जानते ही नहीं ना, लेकिन हमको तो बाबा ने अपनी स्वस्थिति की समझ दी है। तो जब हम अपनी स्वस्थिति में स्थित होकर के वो प्रयोग करते हैं, अपनी बीमारी के साथ भी हम प्रयोग करते हैं, तो उसको हम क्योर भी कर सकते हैं। और ऐसे बहुत भाई बहनों के भी अनुभव हैं, कुछ लोगों ने तो अपनी कैंसर जैसी बीमारी को भी क्योर कर लिया, वो भी जड़ से खत्म हो गई। हम गुलजार दादी को देखते थे, गुलजार दादी को जब हुआ था कैंसर हुआ और उस डॉक्टर ने उनको कहा कि इनका लाइफ पीरियड 2 साल है, माना जिस स्टेज में इनकी बीमारी है उनका लाइफ पीरियड 2 साल है, और दादी ने 30 भी नहीं, उसके भी आगे 33 साल तक, अभी तक भी जब तक दादी जी रही तो उस बीमारी को जीत लिया ना। तो दादी की अपनी स्व की स्थिति कितनी अव्यक्त स्थिति में ही रहते थे दादी, तो दादी से हम कभी दृष्टि भी लेते थे तो जैसे कि उड़ाने वाली दृष्टि होती थी उनकी, दृष्टि ही हमें अपने स्वरूप में स्थित कर देती थी। तो ये तो एक का अनुभव मैं बता रही हूं, ऐसे कितने अनुभव हम सुनते हैं। जब हम आत्मिक स्थिति में होते हैं, आत्मा मालिक है, तो स्वराज्य अधिकारी स्थिति है हमारी वो, यानी कर्मेंद्रियों पर हमारा सहज अधिकार होता है, हम अपनी कर्मेंद्रियों के वश नहीं होते, यानी कोई कर्मेंद्रिय मुझे धोखा दे, कभी आंख धोखा दे रही है, कभी कान धोखा दे रहे हैं, कभी मुख धोखा दे रहा है, आप सब जानते हैं ना, नहीं चाहते देखना देख रहे हैं, नहीं चाहते सुनना फिर भी सुन रहे हैं, या पता है कि ये सब नहीं सुनना चाहिए फिर भी सुन रहे हैं, नहीं बोल निकलना चाहिए लेकिन फिर भी निकल रहा है, इसको हम कहेंगे कर्मेंद्री धोखा दे रही है, मेरे राजा के कंट्रोल में अभी वो कर्मेंद्री पूरी तरह से नहीं, ये तो स्थूल है। सूक्ष्म भी मन बुद्धि संस्कार, वो कितना हमारे कंट्रोल में है, कितनी मन पर कंट्रोलिंग पावर है, कितनी मन पर रूलिंग पावर है। तो बाबा जैसे दरबार लगाते थे, बाबा ने शुरू शुरू में ये बहुत मेहनत की, आत्मिक स्थिति के अभ्यास की भी कितनी मेहनत की वो भी हम सुनते रहते हैं कि बाबा ने शुरू शुरू में लिख लिख करके अपनी डायरियां भरी कि कौन कौन जो भी आसपास रहते हैं सबके प्रति मेरी आत्मिक दृष्टि बननी चाहिए, चाहे वो मेरे लौकिक संबंधी हैं, यशोदा आत्मा है, राधिका आत्मा है, बाबा की बहू का नाम राधिका था, उनकी बेटी का नाम निर्मल शांता, तो बाद में पड़ा नाम घर का पालू था, पालू आत्मा है, मतलब हरेक के नाम से बाबा ने मेहनत करके कि मेरे को इनको आत्मा ही देखना है, ये मेरे ये हैं, ये संबंध की स्मृति मुझे नहीं आनी चाहिए। तो इसके कारण उनकी वृत्ति भी बाबा के प्रति बदल गई, उन्होंने भी बाबा को फिर उस दृष्टि से नहीं देखा कि ये मेरे पति हैं या मेरे ससुर हैं, नहीं, जैसे बाबा सबका है वैसे ही हमारा भी बाबा है, क्योंकि बाबा ने पहले अपने भाव भावना को बदला, अपने वृत्ति और भाव को बदला, तो फिर सबकी भी वृत्ति बाबा के प्रति पूरी तरह से बदल गई। तो हमें भी रहना तो प्रवृत्ति में है, रहना तो संबंधों में है, रहना तो व्यवहार में है, लेकिन मेरा वृत्ति और भाव जब आत्माओं के प्रति इस ये होगा, यानी अव्यक्त स्थिति वाला होगा, तो मेरे द्वारा उनको भी वही फीलिंग आएगी और उनका भी हमारे प्रति वही भाव बनेगा। वो हम तो सुनते हैं ना, है ना, जैसा हम दूसरों के प्रति सोचते हैं दूसरे भी हमारे प्रति वैसा ही सोचने लग जाते हैं, वो ट्रांसफर होता है, वो टेलीपैथी जिसको हम कहते हैं। कई बार हम किसी को कुछ कहते नहीं हैं पर उनके बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, मुंह से नहीं बोलते क्योंकि मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है, पर मन से नहीं सोचते हैं तो वो वाइब्रेशन उन तक जाता है। मुंह से भी ज्यादा तेज गति हमारे मन की है, आप बोले ना बोले मन बोल देता है, मन बोलता है तो सामने वाला भी समझ जाता है और वो भी आपके साथ वैसा ही बिहेव करने लगता है, फिर आप सोचते हैं ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हैं, मैंने तो कुछ बोला नहीं इनको, आपने मुख से नहीं बोला, कैसे बोल दिया, मन से बोल दिया ना, तो मन से बोला वो आत्मा ने कैच कर लिया, वो वाइब्रेशंस कैच कर लिए, वही आपके सामने आ रहा है, वो वैसा ही आपसे बिहेव करने लगेगा। तो ऐसे ही है कि ये स्थिति जो हम वृत्ति और भाव का ही परिवर्तन बाबा ज्ञान में हमारा कराता है सारा, और कुछ नहीं, स्थूल में हम कुछ नहीं बदलते, है ना, हमारी जिम्मेवारियां, हमारे संबंध, हमारे काम सब वैसे ही रहते हैं, परिवर्तन कहाँ होता है, यहाँ ट्रस्टी भाव कहाँ से है, कल की मुरली थी ना, धन के ऊपर बाबा ने कितना कहा, गृहस्थी में रहते हैं लेकिन ट्रस्टी बनकर रहते हैं तो वो भी पूरे वर्षे के अधिकारी। तो भले पूरी तरह से ट्रस्टी बनना मुश्किल लगता है कई बार, लेकिन अगर बन गए तो जितना समर्पित भाई बहने वर्षा पा सकते हैं उतना ही वर्षे के अधिकारी वो भी हैं। तो क्या बदला, सब कुछ तेरा किया बाबा को, तन मन धन भाव ही बदला ना। यूज तो हम ही कर रहे हैं, बाबा थोड़ी यूज करता है हमारा, लेकिन ये तन भी बाबा का है, बाबा ने मुझे सेवा अर्थ दिया है, ये तन भी मेरा नहीं है। और अगर हिसाब किताब भी सुख चुकतू करते हैं तो साक्षी होकर मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों के द्वारा अपना हिसाब किताब चुकतू कर रही हूं। मरजीवा जन्म है हमारा, जैसे आज भी बाबा ने मुरली में कहा कि मर गए ना अभी तो क्या सोचना है, पुरानी दुनिया से ब्राह्मण जन्म तो मरजीवा जन्म ही है ना हमारा, तो मरजीवा जन्म है तो फिर अपने आप ही मृत्यु से भय भी नहीं है, क्योंकि पहले से ही जीते जी मरे हुए हैं और पहले से ही मालूम है कि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। तो हमारा जो वर्तमान है वो तो श्रेष्ठ है ही है, लेकिन अगर जाएंगे भी तो भविष्य भी कोई कम नहीं है, चाहे एडवांस पार्टी में जाएं, चाहे आने वाली सतयुगी दुनिया अगर आने आ रही है, वो समय आ जाएगा तो वो भी प्राप्ति बहुत ऊंची है। तो जाएगी आत्मा तो भी भविष्य बहुत श्रेष्ठ है। तो ये शरीर तो जाना ही है, पता ही है ना। तो उस तरह से जब हमने बाबा को तेरा कह दिया, अपने वृत्ति और भाव का परिवर्तन कर दिया, तो अव्यक्त स्थिति हमारी सहज रहती है, फिर हमें मुश्किल नहीं होती। बाबा कहते हैं कई बार अगर आपने 4-5 मिनट भी अशरीरी स्थिति का अभ्यास कर लिया, आप बहुत बिजी हैं मानो कोई कारण से सारा दिन बहुत व्यस्त, लेकिन बीच में टाइम निकाल करके 4-5 मिनट, हम ट्रैफिक कंट्रोल क्यों करते हैं, इसलिए तो करते हैं कि बिजी शेड्यूल में से अपना वो टाइम हम निकाल लें। तो वो हमने कर लिया तो वो 4 घंटे की नींद के बराबर हमारे मस्तिष्क को शक्ति देता है, लेकिन कब, जब हमारा वो अभ्यास निरंतर है, यानी उस पर हमारा अटेंशन है, तो वो अशरीरी स्थिति हमारे लिए इतनी मदद करती है। और ये भी बाबा ने कहा कि अकाले मृत्यु जो होती है आज के समय में, अगर हम अकाल तख्त नशीन है, आत्मा अपनी स्थिति पर है माना, अकाल तख्त नशीन है आत्मा, तो अगर हम अकाल तख्त नशीन है तो फिर कभी भी अकाले मृत्यु नहीं होगी, ये भी बाबा की गारंटी है, क्योंकि आत्मा अकाल है। तो इस कलयुग में रहते हुए भी अकाले मृत्यु की परिस्थितियों में आप साफ बच जाएंगे, सेफ हो जाएंगे, भले ही थोड़ा बहुत, जैसे कहते हैं ना जो सूली से कांटे की बात की, थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है लेकिन सुरक्षित रहेंगे। और ब्रह्मा बाबा को हमने देखा, मम्मा को देखा, हम सुनते हैं बाबा ने कितनी मेहनत की, 2-2 बजे उठकर के बाबा योग करते थे, क्योंकि बाबा को पता था सारा दिन तो मैं व्यस्त रहता हूं, क्योंकि बाबा को भी तो प्रवृत्ति थी ना यज्ञ में, इतने भाई बहने, 450 भाई बहने, सेंटर भी खुलने लग गए थे, फिर जो भी विघ्न भी आते थे यज्ञ में उन सब का भी बाबा को ही देखना होता था। तो बाबा भी बिजी रहते थे, बाबा जैसी जिम्मेवारी तो शायद हम में से किसी को भी नहीं है, या हमारी दादियां भी जो रही वो भी इतनी बड़ी यज्ञ के जिम्मेवार रहे, फिर भी उन्होंने अपनी अव्यक्त स्थिति को कमजोर नहीं होने दिया, अपनी वो स्थिति बनाकर रखी। तो बाबा से जो भी मिलते थे वो भी अनुभव करते थे, क्योंकि जैसी स्थिति होगी वैसा ही अनुभव होगा। तो दादियां सुनाती थी, दादियां अपने अनुभव सुनाती थी कि हम सेंटरों से आते थे सेवा करके, तो हमारे अंदर बहुत उमंग होता था कि बाबा को बताएंगे, बाबा हमने ये सेवा की, हाँ ये भाई बहने ऐसे ऐसे निकले हैं, और जो भी मन में कोई प्रश्न है, कुछ पूछना है बाबा से, तो वो भी पूछेंगे। और बाबा से मिलने गए, बाबा ने दृष्टि दी, क्योंकि दृष्टि देकर ही मिलते हैं। तो बाबा ने दृष्टि दी, ऐसी दृष्टि कि जैसे उड़ा दिया, और इतना भरपूर हो गए कि भूल ही गए कि पूछना क्या था बाबा से और सुनाना क्या था। और फिर बाद में लगा कि अब तो सुनाने की जरूरत ही नहीं है, या कोई बात सुनाई भी तो शॉर्ट में, माना जो बात हमें 5 मिनट 10 मिनट सुनानी है, वो सिर्फ कहा कि 1 मिनट में सुना के बाबा को सार में पूरा कर दिया कि इतना ही बहुत है। या कई बार हम सुनते हैं, बाबा सुनते सुनते भी जैसे गुम हो जाते थे, यानी बाबा अपनी उस निराकारी स्थिति में बार बार चले जाते थे। पर ऐसे भी नहीं कि बाबा का ध्यान नहीं है, बाबा पूरा सुनता था इस तरह से। तो बाबा हमें कहते हैं यही अंतिम समय की सेवा है, जो फरिश्ता स्थिति भी बाबा ने बनाई है, शरीरी स्थिति और फरिश्ता स्थिति भी, तो वही साक्षात्कार मूर्त बनने की स्थिति है। अगर किन्हीं आत्माओं को साक्षात्कार भी होगा हमारे द्वारा, तो वो तब होगा जब हम अव्यक्त स्थिति में होंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कार हुए ओम मंडली के समय, बाद में भी जब बाबा अव्यक्त हुए तो बहुत विदेश विदेशों में जब सेवा शुरू हुई, तो ज्यादातर जो विदेशी भाई बहने ज्ञान में आए वो बाबा के साक्षात्कार करके आए। आज भी बहुत भाई बहनों को हो जाते हैं ज्ञान में आने से पहले उनको बाबा के या दादियों के साक्षात्कार होते हैं। आप में से भी हो सकता है कोई भाई बहने होंगे, कोई हैं ऐसे जिन्होंने बाबा का, एक है ज्ञान में आने के पहले, ज्ञान में आने के पहले आपको साक्षात्कार हुआ, ऐसे कोई है? हाँ देखो, दो दो भाई हाथ उठा रहे हैं, दो तीन हाथ उठा रहे हैं। और ज्ञान में आने के बाद हुआ, ऐसे ऐसे तो काफी हैं, 10-15 हैं। तो इसका मतलब बाबा हमें अभी भी वो साक्षात्कार कराते हैं, हम भी करा सकते हैं। और बाबा कहते हैं अंत समय में हमें ये सेवा करनी, क्योंकि जो हमारा फरिश्ता स्वरूप है वो अंतःवाहक शरीर है, हमारा सूक्ष्म शरीर से हम कहीं भी जा सकते हैं। ये तो सिर्फ संकल्प से अपना चोला बदली करना है, संकल्प से ही बदली करते ना हम, संकल्प से ही हमने रियलाइज किया कि मैं आत्मा लाइट के शरीर में हूं, ये मेरा शरीर प्रकाश का बना हुआ है, डबल लाइट स्थिति है मेरी। इसीलिए उड़ती कला की स्थिति कहते हैं, क्योंकि जितना लाइट होंगे उतना ऊपर जाएंगे। फरिश्तों को पंख क्यों दिखाते हैं, कोई सचमुच पंख निकले हुए थोड़ी होते हैं, ये तो प्रतीक है कि उड़ती कला है उनकी, माना ज्ञान योग की स्थिति इतनी मजबूत है, वो ज्ञान योग के पंखों से कहीं भी जहां भी दुनिया में उनकी मदद की आवश्यकता है, जहां भी उनके द्वारा कल्याण करने की आवश्यकता है, किसी आत्मा को शक्ति देने की आवश्यकता है, या जहां भी शांति देनी है, वहां वो उड़कर जा सकते हैं। तो मन की गति के समान ही वो सूक्ष्म शरीर की गति है, या अंतर्वाहक शरीर की गति है, जिस गति से मन जाता है, तो हम पहुंच जाएंगे उन आत्माओं के पास, उन्हें वो अनुभव कराएंगे, और वो भी अनुभव करेंगे कि मेरे पास कोई आया। यहां तक भी कोई अनुभव करते हैं, कोई फरिश्ता आया और उसने मुझे समय पर सहयोग दिया। और इसीलिए समय पर सहयोग मिलने से ही हम वो जो असंभव था हमारे लिए, या जो हमें लगता था कि अब तो सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन जैसे कि हम पुनर्जीवित हो गए, जैसे कि हम सहज पार हो गए, किसी ने हमारे अंदर वो शक्ति भर दी। तो बाबा कहते हैं ऐसे अनुभव बढ़ते जाएंगे जब हम अपनी इस सेवा को बढ़ाएंगे। तो हमारा जो लक्ष्य है अंतिम सेवा, जिसे बाबा मनसा सेवा कहते हैं, हमारा जो लक्ष्य है, क्योंकि अंतिम समय में ये स्थूल साधन काम नहीं करेंगे, ये अंतः वाहन जो है हमारा वही काम करेगा। और बाबा कहते हैं कि ये अव्यक्त स्थिति आपकी क्लियर होगी, स्पष्ट होगी, तो बाबा की टचिंग्स को आप कैच करोगे, ना, मानो कोई बात आने वाली है तो आपको पहले से ही पता चलेगा, जैसे कि बाबा ने ही आपको सुना दिया, अंदर कान में ही सुना दिया, आपको महसूस होगा कि बाबा ने मुझे ये इशारा दिया, और वो इतना पावरफुल होगा कि आपको पूरा निश्चय होगा, माना उसमें संशय की मार्जिन नहीं होगी कि पता नहीं ये सही है कि नहीं है, ये थॉट मुझे क्यों आ रहा है, नहीं, एकदम उसमें वो पावर होगी कि आप उस पर उसके निश्चय में टिक जाओगे और वो टचिंग आप आपको सेफ कर देगी, या बाबा के साथ का वो छत्र छाया का अनुभव कराएगी। और कई लोग भी ऐसा अनुभव सुनाते हैं, एक बार एक माता ने मुझे अनुभव सुनाया कि सेंटर पे कोई प्रोग्राम था और सेवा करते करते देर हो गई, रात को 12 बज गए, अब उसको घर आना था। नॉर्मली तो बहनें फिर इतनी रात को कोई माता अकेली है तो उसे घर नहीं भेजते हैं, सोचते हैं कि सेंटर पे ही सो जाए, लेकिन उसे घर आना जरूरी था क्योंकि उनके पति की तबीयत ठीक नहीं थी। तो उसने हिम्मत रखी कि मैं चली जाती हूँ, बाबा मेरे साथ है ना, बाबा साथ है तो मुझे डरने की क्या जरूरत है, मैं शक्ति हूँ। तो उसने एक ऑटो किया और ऑटो में उसने यही संकल्प किया कि बाबा मेरे साथ चल रहे हैं, मैं बाबा के साथ ही बैठकर जा रही हूँ। तो वो ऑटो वाला बिल्कुल जो एड्रेस बताया सीधे सीधे वहां ला करके उसने ऑटो खड़ा कर दिया और फिर वो किराया देने लगी। तो वो भाई ने कहा कि आप तो एक जने का किराया दे रही हो। तो उसने कहा मैं अकेली तो हूं। तो उसने कहा नहीं, मेरे ऑटो में तो दो लोग बैठे थे, आपके साथ तो एक बुजुर्ग भी बैठे थे। तो बाबा ने बिल्कुल उसको अनुभव कराया कि अकेली नहीं है, इनके साथ बाबा है। तो अगर हमने अपनी वो स्थिति बनाई तो बाबा के लिए तो ये सारी बातें हम क्या कहेंगे इसको, कि बाबा तो ये सहज अनुभव करा सकता है ना। तो बाबा जहां चाहिए हमारे लिए, जब चाहिए हाजिर हो सकते हैं, बस एक दिल से हमें बाबा को कहना होता है कि मेरा बाबा आ जाओ, या मेरा बाबा दिल से निकला और उस परिस्थिति में वो बाबा हमारे लिए हाजिर है। तो हमारी जो अव्यक्त स्थिति है, हमारी अव्यक्त स्थिति, हमारे वो फीचर्स दुनिया को फ्यूचर का भी अनुभव कराने वाले हैं। फरिश्ता फीचर्स जो हमारे हैं, क्योंकि बाबा हमें कहता है कि व्यक्त में रहते हुए अव्यक्त स्थिति बनाओ। तो आज जो बाबा अव्यक्त हैं, उस अव्यक्त बाबा से मिलन बनाना और बाबा की शक्तियों को अनुभव करना हमारे लिए सहज होगा। हमें लगेगा जैसे हमने साकार में ही मिलन मनाया और बहुत समीप हमने बाबा के अनुभव किया। अब बाबा व्यक्त में अव्यक्त अनुभव कराने नहीं आते हमें, पहले तो बाबा का अवतरण होता था ना, तो व्यक्त में हमें अव्यक्त बनाने के लिए बाबा आते रहे। लेकिन बाबा तभी भी मुरलियों में कहते थे कि आने वाला समय ऐसा होगा जब अव्यक्त स्थिति से आपको मुझ अव्यक्त से मिलन मनाना है, तभी आप उस मिलन का अनुभव कर पाओगे। तो अब वो समय है और अब जितनी हमारी अव्यक्त स्थिति होगी, हम कभी भी बाबा को मिस नहीं करेंगे और ये भी फील नहीं होगा हमें कि बाबा नहीं आ रहे या बाबा का वो पार्ट नहीं चल रहा, हमने बाबा को नहीं देखा। आप में से कोई भाई बहने हैं जिन्होंने बाबा से मिलन नहीं मनाया, जो गुलजार दादी के बाबा के पार्ट के बंद होने के बाद ज्ञान में आए, वो हाथ उठाएं। देखो भाई बहने हैं जो पहली बार भट्टी में आए हैं, वो हाथ उठाएं। अच्छा, वो भी काफी भाई बहने हैं। तो अब कौन सा समय है सभी के लिए? पुरानों ने तो अनुभव किया कि बाबा व्यक्त में आए और बाबा ने हमें वो अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराया, लेकिन अब समय है हम अव्यक्त स्थिति बनाते हुए अव्यक्त रूप में जो बाबा हैं उनसे मिलन का अनुभव करें। तो बाबा बिल्कुल वैसी ही भासना हमें देंगे जैसे कि साकार में बाबा आते थे। तो ये भट्टी हमें ये अवसर देती है ना, अपने स्थानों पर तो हम कई बातों में बिजी होते हैं, तो जो अनुभव करना चाहते हैं, जो स्थिति बनाना चाहते हैं, शायद हमारे लिए उतना मुश्किल होता है, लेकिन यहां पर हम ये अनुभव करें, वो स्थिति अपनी बनाकर जाएं और ये भी संकल्प करें कि हमें अटेंशन देकर के उसे कायम रखना है। तो हम समय के समीप हैं और उस समीपता के अनुसार बाबा ने हमें पहले से ही इशारा दे रखा है कि अव्यक्त अशरीरी स्थिति जो हमारी अलौकिक स्थिति है, हमारा अलौकिक जीवन ही यही है, ये हमें मजबूत बनानी है। और जितनी ये मजबूत होगा उतना ही हम पास विद ऑनर होंगे, अंतिम पेपर में भी हम सहज पास हो जाएंगे जितना हमारी ये स्थिति मजबूत होगी। तो क्या करना है, अनुभव तो करते हैं लेकिन जितना हो सके उसे निरंतर बनाना है। ओम शांति।